Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kenopanishad, presented by Swami Sri Vishwatmananda Puriji. Thank you. Om Namah Shivaya.
Adhyarop aur apwad prakriya se. To apwad prakriya apnate hue श्रुति अतद व्यावृत्ति से का मतलब अनात्म वस्तु का निषेध करते हुए आत्मा का प्रतिपादन करती है। आत्मा को जानना चाहता है मुमुक्षु और श्रुति को पूछता है कि क्या ये जो अन्नमय कोश है यही मैं हूं। तो श्रुति कहती है नेति, तो क्या फिर स्थूल शरीर यदि मैं नहीं हूं तो सूक्ष्म शरीर मैं हूं, तो उसे भी निषेध करती है कि नेति। तो कार्य मात्र तुम नहीं हो, न कार्य हो यानी स्थूल शरीर हो, न करण हो यानी सूक्ष्म शरीर हो, तो क्या सुसुप्ति अवस्था में सूक्ष्म शरीर तथा स्थूल शरीर दोनों से भी पृथक, वहां न सूक्ष्म शरीर है न स्थूल शरीर है लेकिन हम हैं, तो वो जो हम है वहां पर तब भी तो अज्ञान रूपी कारण शरीर है, तो क्या वह अज्ञान रूपी जो कारण उपाधि है वह कारण उपाधि मैं हूं? तो श्रुति कहती है नेति, दो बार नेति नेति आता है, यानी कार्य उपाधि रूप भी तुम नहीं हो और कारण उपाधि रूप भी तुम नहीं हो, तो फिर हूं कौन? तो जितना निषेध्य वर्ग है कार्य उपाधि तथा कारण उपाधि, उसका निषेध करने के बाद भी जो अवशिष्ट रहता है जिसका निषेध नहीं किया जा सकता, इन उपाधियों के भाव को भी और उपाधि के अभाव को भी जो प्रकाशित कर रहा है, कार्य कारण रूपी उपाधि का निषेध होने के बाद उन निषेध्य शरीर इंद्रिय मन बुद्धि तथा अज्ञान के अभाव को भी जो जान रहा है, वह जानने वाला आत्मा, उसे श्रुति यह करके नहीं बताती, उसे कहती है कि वो जो सभी निषेध्य का निषेध होने के बाद निषेध के परम अवधि के रूप में अवशिष्ट हुआ चेतन वह तुम हो तत्त्वमसि। तो जैसे स्वयं को यह के रूप में नहीं जाना जाता, ऐसे श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनोयत इत्यादि वाक्यों से आचार्य ने जिस चेतन का निरूपण किया, उस चेतन का सम्यक ज्ञान माना जाता है कि विदित अविदित शब्दित जो कार्य उपाधि है, अन्य देव तद विदितात् अथो अविदितात् अधि, इस आगम वाक्य से नेति नेति इत्यादि वाक्य जैसा निषेध द्वारा ब्रह्म का प्रतिपादन करता है वैसा ही बताया गया। विदित कहते हैं व्यक्त नाम रूप से अभिव्यक्त कार्य को, अविदित कहते हैं कारण को। तो ब्रह्म विदित नहीं है का मतलब जो कार्य उपाधि है उससे अलग है, और तो फिर अविदित होगा, तो कहा कि वह अविदित भी नहीं है का मतलब कारण उपाधि से भी परे है। जैसे गीता के 15वें अध्याय में पुरुषोत्तम तत्व को समझाने के लिए पुरुषोत्तम तत्व की दो उपाधि पहले बताई, वह भी पुरुष की उपाधि होने के कारण पुरुष के तरह पुरुष ऐसा मान लिया उसे भी, और वे दो पुरुष बताए, एक क्षर पुरुष दूसरा अक्षर पुरुष, द्वायमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एवच। और क्षर पुरुष कौन है? तो कहते हैं क्षर सर्वाणि भूतानि, तो सभी भवंती ती भूतानी, इस उत्पत्ति के अनुसार भूत शब्द का अर्थ है उत्पन्न होने वाले, उत्पन्न होता है कार्य, इसलिए क्षर पुरुष है कार्य मात्र। सूक्ष्म आकाश आदि पंचभूत तथा उन सूक्ष्म भूतों से बना हुआ जो स्थूल कार्य भौतिक जगत, वो दोनों भी क्षर पुरुष है यानी क्षर उपाधि है, जिसे अन्य देव तद विदितात् इस वाक्य में विदित शब्द से कहा। उसे ही गीता के 15वें अध्याय में भगवान क्षर पुरुष शब्द से कह रहे हैं। और अक्षर पुरुष कौन है तो कहते कूटस्थो अक्षर मुच्यते, कूटस्थ है अक्षर पुरुष, और कूटस्थ शब्द का अर्थ है वहां पर अव्याकृत अज्ञान कारण उपाधि, जो गीता के 15वें अध्याय में अक्षर पुरुष है वो है कूटस्थ, और कूटस्थ शब्द का अर्थ है अव्याकृत कारण उपाधि, और वो जो कारण उपाधि है ये दो पुरुष हो गए, एक कारण उपाधि और दूसरा कार्य उपाधि, व्यक्त अव्यक्त विदित अविदित, और तीसरा पुरुष है पुरुषोत्तम। उस पुरुषोत्तम का वर्णन करते हुए भगवान कह रहे हैं कि यस्मात् क्षरम अतितो अहम् अक्षरादपि चोत्तम है। जैसे यहां अन्य देव तद विदितात् कहा तो वहां पर कहते हैं कि यस्मात् क्षरम अतितो अहम् अक्षर से मैं अतीत हूं, मतलब अक्षर से परे हूं और क्षर से भी परे हूं। यस्मात् क्षरम अतितो अहम् अक्षरादपि चोत्तम और अक्षर से भी उत्तम यानी अलग हूं, उत्कृष्ट हूं, परे हूं, अर्थात कार्य कारण से अतीत जो तत्व है वो है पुरुषोत्तम तत्व। उसी को यहां पर श्रोत्र से श्रोत्र मनसो मनोयत इत्यादि वाक्य से बताया गया, जो निर्विकार चेतन है वो निर्विकार चेतन है पुरुषोत्तम, और उस पुरुषोत्तम को अन्य देव विदितात् अथो अविदितात् अधि इस वाक्य ने कार्य जो निषेध्य कार्य तथा कारण उपाधि है उसका निषेध करके प्रतिपादन किया, अतद्व्यावृत्ति से प्रतिपादन किया। और इस प्रकार का जो विदित अविदित से भिन्न ब्रह्मबोध है वो होगा आत्मा ही, कार्य तथा कारण से अतिरिक्त जो होता है वह सबकी आत्मा होता है, उसे आप यह करके नहीं जान सकते। जिसका यह करके ज्ञान होता है उसे कहा जाता है कि वो सुविदित हुआ, अच्छी तरह से जाना गया। पुष्पमाला को आप अपने से भिन्न इदं के रूप में जान रहे हैं, यह के रूप में जान रहे हैं, तो माना जाता है कि आपके आंख के सामने आया हुआ पुष्प आपको ज्ञात हो रहा है, आपके ज्ञान का विषय बन रहा है, आप उसके ज्ञाता हैं। तो जो आपका दृश्य है और आप उसके दृष्टा हैं, तो उस दृश्य को कहा जाता है कि हम अच्छी तरह से जानते हैं, इदंतया उसके ज्ञाता हैं। जो विदित और अविदित से भिन्न चेतन है उसे कोई भी अपने से भिन्न करके इदम के रूप में नहीं जान सकता, और यदि कोई ये समझ लेता है कि हम उसे घटादि पदार्थों के तरह इदंतया अच्छी तरह से जानते हैं, तो यहां के आचार्य कहते हैं कि यदि ऐसी किसी की मान्यता है तो चाहे वह मनुष्य हो या देवता हो, जो परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को अपने से भिन्न यह करके जानता है और उस परमात्मा के स्वरूप का स्वयं अलग रह करके ज्ञाता बनता है और ये मानता है कि मैंने ब्रह्म को जाना, तो शास्त्र की दृष्टि में और विद्वानों की दृष्टि में वह ब्रह्म का अल्प ही बोध है, क्योंकि वो दृश्य बना करके देख रहा है। और जो ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप है वह किसी के भी अलग रह करके ईदंतया ज्ञान का विषय नहीं बनता। इसलिए ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप को तो कहा यन मनसान मनुते येन आहुर मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वम, जिसका मन भी स्वतंत्र रूप से प्रकाशन नहीं कर पाता अपितु अपने प्रकाश्य वस्तु को सुखादि को प्रकाशित करने का सामर्थ्य मन को जिस चेतन से मिल रहा है वह चेतन ब्रह्म है। और उस ब्रह्म का सम्यक ज्ञान यदि करना चाहते हो तो वह ब्रह्म तुमसे अलग नहीं, वो तुम ही हो, तदेव ब्रह्मत्वम, वो ब्रह्म मैं के रूप में अनुभव में आएगा। और जिस किसी को ब्रह्म का मैं के रूप में, ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप का मैं के रूप में अनुभव हो रहा है, शास्त्र कहता है वह ब्रह्म का सम्यक ज्ञान है। और बाकी तो ईदंतया ब्रह्म का ज्ञान वो असम्यक ज्ञान है। और असम्यक ज्ञान ये मुक्ति का हेतु नहीं होता, सम्यक ज्ञान से मुक्ति होती है। इसलिए शिष्य को आचार्य ने यह समझाया कि यदि तुम्हें ब्रह्म का ईदंतया बोध है और ईदंतया बोध प्राप्त करके मानते हो कि ब्रह्म को मैं अच्छी तरह से जानता हूं, तो ये ब्रह्म का ब्रह्म के अल्प स्वरूप का ही तुम्हारा ज्ञान माना जाएगा। तुम्हें तो अभी ब्रह्म के पारमार्थिक स्वरूप का विचार ही करना पड़ेगा। जब तक आत्मा के रूप में परमात्मा के वास्तविक स्वरूप का बोध नहीं होता तब तक परमात्मा के वास्तविक स्वरूप का तुम चिंतन करो, विचार करो। शिष्य आचार्य की प्रेरणा से प्रेरित होकर के जो अन्य देव तद विदितात अथो अविदितात अधि इत्यादि से बताया गया ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप है उसका एकांत में बैठ करके ठीक से चिंतन करता है। और चिंतन करके ये कहा गया कि फिर आचार्य को उसे सम्यक बोध हुआ, अच्छी तरह से ज्ञान हुआ। अच्छी तरह से ज्ञान हुआ का मतलब ईदंतया नहीं हुआ, अहम के रूप में परमात्मा के वास्तविक स्वरूप का उसे साक्षात्कार हुआ। और अपने इस साक्षात्कार को, अपने यथार्थ अनुभव को शास्त्र के साथ तथा आचार्य के अनुभव के साथ मिलाने के लिए फिर आचार्य के पास आकर के बताता है कि ना हम मन्ने सुवेदेति नो न वेदेति वेदच। हे भगवान, मैं आपके द्वारा उपदिष्ट जो विदित अविदित से अतिरिक्त ब्रह्म है उसे ईदंतया ज्ञात नहीं मानता हूं, और वह मेरा स्वरूप ही होने के कारण और स्वयं प्रकाश होने के कारण मैं अपने आप को तो जानता ही हूं, इसलिए उसे भी जानता हूं, लेकिन मैं के रूप में जानता हूं, इदं के रूप में नहीं। और मैं आपको प्रतिज्ञा पूर्वक कह सकता हूं कि आपके जो शिष्य हैं हम लोग उनमें भी आपका जो शिष्य मेरे तरह परमात्मा के यथार्थ स्वरूप का ईदंतया नहीं अपितु मैं के रूप में बोध प्राप्त किया है, माना जाएगा कि उसी का सम्यक बोध है, अन्यथा उसका वो बोध ब्रह्म के अल्प स्वरूप विषयक ही है, क्योंकि ब्रह्म का अल्प स्वरूप ही ईदंतया ज्ञात हो सकता है। इस प्रकार शिष्य और आचार्य के द्वारा प्रतिपादित जो संवाद के द्वारा प्रतिपादित ब्रह्म बोध है उसको श्रुति ने अपने शब्दों में कहा कि यस्या मतम तस्य मतम मतम यस्य न वेदसः, कि जो ब्रह्म को ईदंतया ज्ञात नहीं मानता है तो शास्त्र कह रहा है कि उसे ब्रह्म सम्यक ज्ञात है, वो ब्रह्म ज्ञानी है, क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी को ब्रह्म का यथार्थ स्वरूप ईदंतया ज्ञात नहीं होता, अमत रहता है, यानी अविदित विदित नहीं होता। और मतम यस्य न वेदसः, श्रुति कहती है कि जो ब्रह्म को मानता है कि मैंने ईदंतया जान लिया, तो ब्रह्म को ईदंतया जानने वाला ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप को जानता ही नहीं। तो ब्रह्म के ईदंतया ज्ञान को श्रुति अल्प ज्ञान बता रही है, और ब्रह्म का आत्मरूप से बोध ही सम्यक बोध है। तो आकांक्षा हुई कि ब्रह्म के सम्यक बोध का उपाय क्या है, आत्मरूप से ब्रह्म को कैसे जाने। तो बताया कि जो विदित अविदित से अतिरिक्त, कार्य कारण उपाधि से अतिरिक्त शुद्ध चेतन परमात्मा है, उसे आत्मा के रूप में अनुभव करने के लिए एक उपाय है कि प्रतिबोध विदितम मतम, समस्त अंतकरण की जो वृत्तियां हैं वे जड़ होते हुए भी चिदवत भास रही हैं, उसी को व्यवहार अवस्था में हम ज्ञान कहते हैं। इसलिए यहां भी तो बोध शब्द से कहा है प्रतिबोध विदितम मतम, इसमें बोध का अर्थ होता है ज्ञान, और वो ज्ञान कौन सा, चक्षुरादि प्रमाणों से जो अंतकरण में उत्पन्न हुआ रूपादि विषयक वृत्त्यात्मक ज्ञान है, प्रमाण से उत्पन्न हुआ वृत्त्यात्मक ज्ञान, उसे कहा गया बोध शब्द से। और ये जितने भी बोध हैं, यानी प्रमाणों से उत्पन्न हुई अंतकरण की वृत्तियां हैं, वे जड़ होते हुए भी चित्वत भास रही हैं, चेतन के तरह भास रही हैं। तो शीतल जल यदि उष्ण प्रतीत होता है तो माना जाता है कि उसमें स्वभावतः उष्ण अग्नि का संपर्क है। ऐसे जड़ अंतकरण की वृत्तियां चिदवत भास रही है, तो जो स्वतः चेतन है उस चेतन का निश्चित ही उनके साथ संसर्ग है, संबंध है, और वो जो संबंध है वो कौन क्या संबंध है, तो अंतकरण की वृत्तियां भास रही है, उनको भाषित कर रहा है वो चेतन, साक्षी साक्षी भाव संबंध है। तो उपासक यानी तत्वचिंतक क्या करें कि अपने अंतक वेष्टि अंतकरण वृत्तियां जितनी भी हैं उन सब वृत्तियों में चैतन्य का संपादक जो चेतन उन सब वृत्तियों से अलग है, ऐसा त्वम पदार्थ का शोधन करें। तत्वमसी वाक्यांतर्गत जो त्वम पदार्थ है जिसे सुनने वाला मैं के रूप में ग्रहण करता है, उसका मैं का वास्तविक स्वरूप क्या है, तो ये चक्षुरादि प्रमाणों से बोध उत्पन्न हो रहा है जिस अंतकरण में, उस अंतकरण से विशिष्ट अंतकरण के साथ तादात्म्यपन्न चैतन्य, ये तो तत्त्वम शब्द का वाच्यार्थ है। लेकिन उसका शोधन करना है, तत्त्वम पदार्थ शोधन करते समय तो ये समझना है कि उस अंतकरण के परिणामों सहित तो अंतकरण से भी अलग अंतकरण का जो साक्षी है वह साक्षी तत्वमसी वाक्यांतर्गत त्वम पदार्थ है, शोधित त्वम पदार्थ है, वो मैं हूं। इस रूप में निर्धारित करें, मैं शरीर इंद्रिय मन बुद्धि या बुद्धि के परिणाम जो प्रकाश है वो नहीं, लेकिन इन बुद्धि वृत्तियों का प्रकाशक जो चेतन है वो मैं हूं। तो माना जाता है त्वम पदार्थ का शोधन हुआ। और बाकी अपने वेष्टि उपाधि से अतिरिक्त जितने भी इस संसार में प्राणी हैं, तत्व जिज्ञासु ऐसा चिंतन करेगा कि उन सब प्राणियों के अंतःकरण में भी होने वाले जो प्रमाणों से बोध है यानी वृत्तियां हैं वे भी जड़ हैं लेकिन चिद्वत भास रही हैं और वे भी मेरे तरह ही मेरे अंतकरण वृत्तियों के तरह ही प्रकाशित हो रही है। वे जो सभी प्राणियों की अंतकरण वृत्तियां जड़ होते हुए भी चिद्वत भास रही है जिस चेतन की सन्निधि से, वह चेतन ब्रह्म तत्त्वमसी वाक्य अंतर्गत तत्पदार्थ है इस रूप में निश्चित कर लें। और वो जो चेतन है उन दोनों चेतनों को जो उसके प्रकाश्य अंतकरण की वृत्तियां हैं, एक तो साधक की अपने वेष्टि अंतकरण की परिणाम रूप वृत्तियां, उसका प्रकाशक एक चेतन है जिसको मैं समझ रहा है, और बाकी सभी शरीरों में जो अंतकरण की वृत्तियां हैं उनका प्रकाशक एक चेतन है उसे तत्पदार्थ समझ रहा है। उन चेतन में समष्टि अंतकरण वृत्तियों के प्रकाशक चेतन में और वेष्टि अंतकरण वृत्ति के प्रकाशक चेतन में यदि प्रकाश्य वृत्तियों को हटा करके उन वृत्तियों का विचार से प्रकाश्य वृत्तियों का निराकरण कर ले बुद्धि से और केवल चेतन को देखें तो वो जो केवल चेतन है उसमें कोई भेद नहीं है। प्रकाश्य उपाधि के कारण भले ही भेद प्रतीत हो लेकिन स्वतः उसमें कोई भेद नहीं है। ऐसा जो चेतन है वो मैं हूं इस रूप में अनुभव कर ले तो माना जाता है कि प्रतिबोध विदितम मतम ये समस्त अंतकरण वृत्तियों का अवभासक चेतन मैं हूं इस रूप में ब्रह्म का बोध वह सम्यक बोध है। क्यों सम्यक बोध है कहते इसलिए कि इसी बोध से अमृतत्व की प्राप्ति होती है, अमृतत्व ही विन्दते, और उस अमृतत्व की प्राप्ति होती है मैं के रूप में, क्या नाम, आत्मा के रूप में, ब्रह्म ज्ञान से अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार से जो अमृतत्व प्राप्त हो रहा है वह अमृतत्व यद्यपि स्वभाव है आत्मा का, वो स्वरूप है, वो पहले से ही उसे प्राप्त है, पहले से प्राप्त जो अमृतत्व है वह केवल अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार से अध्यास की निवृत्ति होने से, बंध की निवृत्ति होने से अभिव्यक्त होता है। ऐसे अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार ने अमृतत्व को प्राप्त नहीं कराया, केवल अमृतत्व अपना स्वरूप होता हुआ भी अभी तक जिस अविद्या के कारण अनुभव में नहीं आ रहा था उस अविद्या को निवृत्त कर दिया। अविद्या की निवृत्ति के लिए मात्र तत्त्वमशादी वाक्यों से उत्पन्न हुआ साक्षात्कार आवश्यक है भ्रम की निवृत्ति के लिए, और यह साक्षात्कार जिसको होता है उसके बंध की निवृत्ति तो करता ही है, अविद्या का निवर्तक तो बन ही जाता है, और ये साक्षात्कार रूप जो अंतकरण का परिणाम है वृत्ति है वह मिटने से पहले अंतकरण में से, क्योंकि उत्पन्न हुई है तो अंतकरण की वृत्ति क्षणिक है, वह जरूर जाएगी भी, उत्पन्न हुई है तो मिटेगी, लेकिन मिटने से पहले शास्त्र कहता है कि ब्रह्मज्ञानी के अंतकरण में एक अविनाशी बोध उपलब्ध कराता है, और अविनाशी बोध उपलब्ध करा करके, क्या नाम, अविनाशी वीर्य, वीर्यम विद्या विन्दते अमृतम के अनुसार वह अविनाशी वीर्य ब्रह्मज्ञानी के बुद्धि में आ जाता है सामर्थ्य, जिससे फिर कभी भी वह अविद्या से अपने वास्तविक स्वरूप को आवृत्त, अविद्या उसके वास्तविक स्वरूप को आवृत्त नहीं कर पाती, ऐसा एक सामर्थ्य ब्रह्मज्ञान से ब्रह्मज्ञानी की बुद्धि में आ जाता है। ये इस प्रकार ये केनोपनिषद में ये दो खंडों के द्वारा ब्रह्म का जो पारमार्थिक स्वरूप है उसका वर्णन हुआ, और तृतीय तथा चतुर्थ खंड में एक उपास्य सगुण ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन करके अहंग्रह उपासना सगुण ब्रह्म की बताई, जो निर्विशेष तत्व का आत्मरूप से ग्रहण करने में असमर्थ है उसके लिए ये सगुण ब्रह्म की अहंग्रह उपासना का वर्णन है। और अंतिम श्लोक में ये बताया कि केनेशितम इत्यादि मंत्रों के द्वारा प्रतिपादित ब्रह्मबोध जिसे हो जाता है वह स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। वह स्वर्गलोक यहाँ ब्रह्म का स्वरूप है। स्वर्गलोक कोई देवता जिस लोक में रहते हैं वह लोक नहीं, अपितु वह स्वर्गलोक है ब्रह्म भाव, नित्य सुख स्वरूप, क्योंकि वहां विशेषण है स्वर्गलोक का अनंते स्वर्गलोक है। ये जो इंद्रादि देवता जिस लोक में रहते हैं वह लोक तो एक प्रकार से विनाशी लोक है, वो तो क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति के अनुसार जब तक पुण्य है तभी तक है, कर्म का फल होने से विनाशी है, अनित्य है। और ये अनंत स्वर्गलोक है ब्रह्म भाव, और वह जेय है का मतलब महतो महियान के अनुसार सभी महान जो वस्तुएं हैं उनसे भी महान है का मतलब निरतिशय व्यापक है। ऐसे निरतिशय व्यापक ब्रह्म का आत्म रूप से जिन्हें बोध होता है वह ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति के अनुसार ब्रह्म रूप से ही अवस्थित हो जाता है, जीवित अवस्था में ही ब्रह्मनिष्ठ हो जाता है। और जब प्रारब्ध भोग करके ब्रह्मज्ञानी की उपाधि क्षीण हो जाती है, शरीर छूट जाता है, तो जीवित अवस्था में ही जो ब्रह्म रूप था वह शरीर के छूटने के बाद निर्विशेष ब्रह्म भाव में स्थित होता है। इसी के लिए तो मनुष्य जन्म है, अपने वास्तविक स्वरूप की पहचान करके जन्म मृत्यु के चक्र से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त होने के लिए, और इसका उपाय ब्रह्म का आत्मरूप से बोध मात्र है। उस प्रकार का बोध की योग्यता आप हम सब में परमात्मा की कृपा से प्राप्त हो, यही परमात्मा के चरणों में प्रार्थना करते हुए इस सत्र को यहीं विराम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।